ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 11 मई 2025 के लिए है। विषय: आदम और प्रतीत आदमी। स्वर्णपथ: प्रेरितों के काम। तुम भविष्य अद्विक्ताओं की संतान और उस वचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी, जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। उत्तर दैय ध्यान भजन संहिता। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। मैंने अपने चुने हुए से ये वचा बांधी है, क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद की ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वो लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं, वो तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धाम के कारण महान हो जाते हैं। मैं अपनी वचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। वो चंद्रमा के नियन और आकाश मंडल के विश्वास युग्य साक्षी के नियन सा बना रहेगा। पाठ उपदेश बाइबल में से उत्पत्ति। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। उत्पत्ति। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदमी जीवित पुरानी बन गया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी सांति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दी और उसको आदम के पास ले आया। और आदमी और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। उत्पत्ति। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। यशाया। क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वो झुकाए जाएंगे। सो तुम मनुष्य से परे रहो जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य ही क्या है। व्यवस्था विवरण। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसको ढूंढो। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वो तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वचन उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। व्यवस्था विवरण। आज के दिन तुम सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े रहो कि जो वचा तेरा परमेश्वर यहोवा आज तुझसे बांधता है और जो शपथ वो आज तुझको खिलाता है उसमें तू साझी हो जाए, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुझको दिया और उस शपथ के अनुसार जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों से खाई थी, वो आज तुझको अपनी प्रजा ठहराए और आप तेरा परमेश्वर ठहरे। शमुएल, इफ्राइम के पहाड़ी देश के रामातीम सुफीम नाम नगर का निवासी अलकाना नाम पुरुष था। वो इफ्राइमी था और उसकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम फिनना था। और फिनना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। इसलिए उसके पति अलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शैलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा था और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी शुद्धि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इसराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। और अलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी शुद्धि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। जब उसने उसका दूध छुड़ाया, तब वो उसको संग ले गई और बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही दासी हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। यशाया। हे धाम पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खानी में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी गई और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रगत हुआ है। मैं अपने भुजाबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। अद्वीप मेरी बात जोहेंगे और मेरे भुजाबल पर आशा रखेंगे। हे धाम के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नाम अधराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विस्मत ना हो, परंतु मेरा धाम अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मां, ईश्वर, दिव्य और शाश्वत सिद्धांत, जीवन, सत्य और प्रेम। विज्ञान में मनुष्य आत्मा की संतान है, सुंदर, अच्छा और शुद्ध उसके वंश का गठन करते हैं। उसका मूल नश्वर की तरह पार्श्वकवर्ती में नहीं है और ना ही वो बुद्धि तक पहुंचने से पहले भावतिक परिस्थितियों से गुजरता है। आत्मा उसका मूल और होने का परम स्रोत है, परमेश्वर उसका पिता है और जीवन उसके होने का नियम है। ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखें कि मनुष्य ईश्वर की संतान है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य आध्यात्मिक है, भावतिक नहीं। आत्मा जीव आत्मा है, पदार्थ से बाहर, पदार्थ के अंदर कभी नहीं। शरीर को कभी जीवन और संवेदना नहीं देती। आत्मा का भरमाण आध्यात्मिक पुराणियों से भरा हुआ है और इसका शासन दिव्य विज्ञान है। मनुष्य निम्नातम नहीं, परंतु उच्चतम मानसिक गुणों की संतान है। मनुष्य आध्यात्मिक अस्तित्व को उसी अनुपात में समझता है जैसा कि सत्य और प्रेम के खजाने हैं, मनुष्यों को ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहिए। उनका स्नेह और उद्देश्य आध्यात्मिक रूप से वास्तविक होना चाहिए। उन्हें होने की व्यापक व्याख्याओं के पास होना चाहिए ताकि पाप और मृत्यु डर को दूर किया जा सके। क्रिया के उच्चतर स्तर की ओर बढ़ते हुए विचार भावतिक इंद्रिय से आध्यात्मिक की ओर, शिक्षाणिक से प्रेरणात्मक की ओर तथा नश्वर से अमर की ओर बढ़ता है। सभी चीजें आध्यात्मिक रूप से निर्मित हैं। मन ही सृष्टि करता है, पदार्थ नहीं। प्रेम दिव्य सिद्धांत मनुष्य साथ ब्रह्मांड का पिता और माता है। एक असीम मन भावतिक सीमाओं से आगे नहीं बढ़ सकता। परिमितता, अनंतता का विचार या विशालता प्रस्तुत नहीं कर सकती। एक परिमित या भावतिक स्रोत से उत्पन्न मन सीमित और स्थिर होना चाहिए। अनंत मन ही सृष्टि करता है और सृष्टि इस मन से निकलने वाली अनंत छवि या विचार है। जीवन पदार्थ में नहीं है, इसलिए इसे पदार्थ से बाहर जाना नहीं कहा जा सकता। पदार्थ और मृत्यु नश्वर भ्रम है। आत्मा और सभी आध्यात्मिक चीजें वास्तविक और शाश्वत हैं। मनुष्य मांस की संतान नहीं है, बल्कि आत्मा की है। जीवन की है, पदार्थ की नहीं, क्योंकि जीवन ईश्वर है। जीवन को शाश्वत स्वयंभू होना चाहिए। जीवन वो चिरस्थाई मैं हूं है, वो अस्तित्व जो था, है और रहेगा, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। मानव के हित में अच्छाई बुराई पर अध्यात्म और पशु पर अधिपति होना चाहिए, परंतु सुख कभी नहीं जीता जाएगा। इस खगोल स्थिति की प्राप्ति हमारे पूर्व जन्म को कम करेगी, अपराध को कम करेगी और महात्व आकांक्षा को उच्च लक्ष्य देगी। पाप की हर घाटी को ऊंचा किया जाना चाहिए और स्वार्थ के हर पहाड़ को नीचे लाया जाना चाहिए, ताकि विज्ञान में हमारे भगवान का राजमार्ग तैयार हो सके। सर्वज्ञ सोच वाले माता पिता की संतानों को अधिक बुद्धि, बेहतर संतुलित मन और मजबूत शारीरिक संरचना विरासत में मिलती है। ईमानदारी और सदाचार विवाह अनुबंध की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। आत्मा अनंतता अपना दावा करेगी जो वास्तव में है, और भावतिक इंद्रियों की आवाजें हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी। अनुभव को सद्गुण की पाठशाला होना चाहिए और मानवीय खुशी मनुष्य की सर्वोच्च प्रकृति से निकलनी चाहिए। मसीह सत्य प्रतीक विवाह वेदी पर उपस्थित होकर जल को मदिरा में परिवर्तित करें तथा मानव जीवन को प्रेरणा प्रदान करें, जिससे मनुष्य के आध्यात्मिक और शाश्वत अस्तित्व को समझा जा सके। आध्यात्मिक रूप से ये समझने के लिए कि एक रचनाकार है, ईश्वर सारी सृष्टि को उजागर करता है, शास्त्रों की पुष्टि करता है बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पीड़ा के, और मनुष्य की मृत्यु और सही और शाश्वत का मधुर आश्वासन लाता है। यदि मसीही वैज्ञानिक अपनी संतानों को आध्यात्मिक रूप से शिक्षित करते हैं, तो वो दूसरों को भी आध्यात्मिक रूप से शिक्षित कर सकते हैं, और इससे परमेश्वर की सृष्टि की वैज्ञानिक समझ के साथ कोई टकराव नहीं होगा। किसी दिन बच्चा अपने माता पिता से पूछेगा, क्या आप पहली आज्ञा का पालन करते हैं? क्या आपका ईश्वर और निर्माता एक है या मनुष्य ही निर्माता है? यदि पिता उत्तर दे, परमेश्वर मनुष्य के द्वारा मनुष्य की रचना करता है, बच्चा पूछ सकता है, क्या आप ये सिखाते हैं कि आत्मा भावतिक रूप से सृजन करती है, या आप ये घोषणा करते हैं कि आत्मा अनंत है, इसलिए पदार्थ का प्रश्न ही नहीं उठता? बच्चों की संपूर्ण शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे उनमें नैतिक और आध्यात्मिक नियमों के पालन की आदतें विकसित हो सकें, जिससे बच्चा तथाकथित भावतिक नियमों में विश्वास को पूरा कर सके और उस पर विजय प्राप्त कर सके, जो एक ऐसी मानी आता है जो रोग को जन्म देती है। बच्चों को ज्ञान में बच्चे ही बने रहने दिया जाना चाहिए तथा उन्हें मनुष्य की उच्चतर प्रकृति की समझ में वृद्धि के माध्यम से ही पुरुष और महिला बनना चाहिए। मनुष्य की उच्चतर प्रकृति नियम द्वारा शासित नहीं होती, यदि ऐसा होता तो ज्ञान का क्रम उलट जाता। प्रेम प्रकृति को समृद्ध करता है, बड़ा करता है, शुद्ध करता है और उसे उन्नत करता है। कभी कभी हम सीखेंगे कि आत्मा महान वास्तुकार ने विज्ञान में पुरुषों और महिलाओं को कैसे बनाया है। हमें कृष्ण भंगर और झूठ से तौबा करना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो हमारे सर्वोच्च स्वार्थ में बाधक हो। मानव पीढ़ी के रूप में अनुपतिक रूप से बंद हो जाता है। शाश्वत के सम्मान जैसे पूर्ण लिंक आध्यात्मिक रूप से विवेकी होंगे और मनुष्य पृथ्वी पर नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ सह अस्तित्व में दिखाई देगा। मनुष्य और ब्रह्मांड का वैज्ञानिक तथ्य आत्मा से विकसित होता है और इसलिए आध्यात्मिक है, जैसा कि दिव्य विज्ञान में तय किया गया है। इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य केवल स्वास्थ्य के भावना प्राप्त करते हैं क्योंकि वो पाप और बीमारी की भावना को खो देते हैं। मनुष्य कभी ये नहीं कह सकता कि मनुष्य एक निम्रता है। पहले से ही बनाए गए भगवान के बच्चों को पहचान लिया जाएगा क्योंकि मनुष्य होने का सत्य पाता है। इस प्रकार ये है कि असली आदर्श आदमी अनुपात में प्रकट होता है क्योंकि झूठ और सामग्री गायब हो जाती है। जब यीशु ने परमेश्वर के बच्चों की बात की, ना के पुरुषों के बच्चों की बात की, तो उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इसका अर्थ है सत्य और प्रेम वास्तविक मनुष्य में राज्य करता है। ये दर्शाता है कि भगवान की छवि में आदमी बेदाग और शाश्वत है। बच्चे आध्यात्मिक विचार और जीवन सत्य और प्रेम के प्रतिनिधि। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।